अक्रूर जी मथुरा से रवाना हो चुके हैं, वृंदावन की ओर जा रहे हैं। जैसे ही रथ पे सवार हुए, प्रेमावेश में श्री कृष्ण का स्मरण करते रहे और सोचते रहे बड़े भक्ति भाव से कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे अब थोड़े ही समय में श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त होगा। कल हम कह चुके हैं कि अक्रूर जी की जो ये यात्रा रही मथुरा से वृंदावन, वो बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। एक कारण तो ये है कि इस यात्रा की वजह से भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन की प्रकट लीला समाप्त हुई और मथुरा लीला भगवान की प्रारंभ हुई। परंतु और भी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अक्रूर जी ने अपने मनोभावना से ये सारी दुनिया को सिखलाया है कि वृंदावन जाते समय या श्री कृष्ण का दर्शन करते समय या जब हम भगवान का दर्शन करने जा रहे होते हैं तो हमारी भावना कैसे होनी चाहिए। अपने उदाहरण से अक्रूर जी ने सिखलाया है। हम ये देख चुके हैं कि सबसे पहली आवश्यकता तो ये है कि जब हम श्री कृष्ण के धाम में जाते हैं तो हृदय में भगवान के प्रति, उनके धाम के प्रति, उनके भक्तों के प्रति, उनके नाम के प्रति प्रेम या भक्ति होनी चाहिए। दूसरी बात, हमें यह समझना चाहिए कि भगवान के धाम में जाने के लिए जो बड़े सौभाग्य की आवश्यकता है वो इतनी विशाल है कि हमें आश्चर्य होना चाहिए कि ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। तो अपने सौभाग्य के ऊपर चिंतन मनन करना चाहिए कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। और फिर आगे अक्रूर जी बताते हैं, आगे आगे जैसे मन में ही सोच रहे हैं तो आइए श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 38वें अध्याय के चौथे श्लोक को हम पढ़ते हैं। चौथा श्लोक है स्क्रीन पर, ठीक। ममैतद् दुर्लभम् अन्या उत्तम श्लोक दर्शनम् विषयात्मनो यथा ब्रह्म कीर्तनम् शूद्रजन्मनः अक्रूर जी कह रहे हैं, मम एतद, मुझे ये एक अवसर जो प्राप्त हुआ किस चीज के लिए, उत्तम श्लोक दर्शनम। भगवान श्री कृष्ण का और एक नाम है उत्तम श्लोक, जिसका मतलब है वो व्यक्ति जिनका गुणगान उत्तम श्लोकों से किया जाता है, जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कविता है, पंक्तियां हैं, गीत हैं, वचन हैं, शब्द हैं, जो श्रेष्ठ शब्दों से, वचनों से जिनका गुणगान किया जाता है वो है उत्तम श्लोक। साथ साथ में जब ऐसे उत्तम श्लोकों को हम सुनते हैं और ऐसे उत्तम श्लोक व्यक्ति अर्थात श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो फिर हम तम या अंधकार या अज्ञान के परे आ जाते हैं। उत्तम, तम अर्थात अंधकार अज्ञान, और उत्तम मतलब उस तम या अंधकार को पार करना। तो ऐसे उत्तम श्लोक श्री कृष्ण का दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए अक्रूर जी कहते हैं मम एतद् दुर्लभम मन्ये, मैं इस बात को बहुत दुर्लभ मानता हूं कि किसी को उत्तम श्लोक श्री कृष्ण के दर्शन का अवसर प्राप्त हो जाए। और अब जहां तक मेरा सवाल है, अक्रूर जी सोच रहे हैं विषयात्मनः, मैं तो एक विषयी आदमी हूं। विषयी आदमी का अर्थ है जो कि केवल इंद्रिय भोग में लगा हुआ है, मैं तो एक संसारी व्यक्ति हूं। और ऐसे विषय भोग करने वाले व्यक्ति को न जाने कैसे एक ऐसे चीज करने को मिल रही है जो बहुत दुर्लभ है, भगवान का दर्शन। यथा ब्रह्म कीर्तनम शूद्र जन्मनः, जिस तरह से एक अयोग्य व्यक्ति को अचानक मानिए वेदों का पाठ करने का अवसर मिले, वो बहुत दुर्लभ चीज है, प्राय असंभव है। ठीक उसी तरह से मुझ जैसे अयोग्य व्यक्ति को ऐसे श्री कृष्ण के दर्शन का अवसर मिला है, ये वास्तव में बहुत ही आश्चर्य की बात है। तो तीसरी बात जो हम अक्रूर जी की प्रार्थना से या उनके ध्यान से समझ सकते हैं वो ये है कि हमें वृंदावन धाम जाते समय, कृष्ण का दर्शन करने के लिए जाते समय अपने आप को बिल्कुल अयोग्य समझना चाहिए। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि क्या किस चीज को हम करने जा रहे हैं, उसका मूल्य कितना है और वो हमें आसानी से प्राप्त हो रहा है जहां की मेरी कोई योग्यता ही नहीं है। जैसे अचानक यदि कोई हमें एक इतना ऊंचा पद दे दे दुनिया में, हमें सारे विश्व का राष्ट्रपति बनाए, राजा बनाए, हम सोचेंगे अरे भाई मैं कैसे योग्य हूं इस इतने ऊंचे पद की प्राप्ति के लिए, हमें लगेगा कि हम तो ऐसे योग्य नहीं हैं। हाँ, दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो अपने आप को योग्य समझते हैं, वो दूसरी बात है, वो क्योंकि माया के चंगुल में बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं। परंतु एक साधारण व्यक्ति यदि वो ईमानदार हो और सज्जन हो, वो तो सोचेगा भाई इतना बड़ा पद मेरे लिए, मैं तो इतना योग्य नहीं हूं। अब ये तो रही बात केवल एक छोटे से पृथ्वी लोक के राज पद के लिए, और कहां वो पद भक्ति का पद जिसको प्राप्त करने से हमें सबसे श्रेष्ठ संपत्ति जो कि स्वयं भगवान है वो प्राप्त हो जाते हैं। वो पद है ये जिसके द्वारा हम भगवान के सानिध्य में रह सकते हैं, हमारा पता जो है वो भगवान का ही पता होगा, भगवान जैसा रूप भी मिल सकता है, भगवान के सानिध्य में हम उनके हमेशा के लिए रह सकते हैं, जन्म मृत्यु को पार करके उनके पास जा सकते हैं। कितना बड़ा ये लक्ष्य है, ऐसा सौभाग्य प्राप्त करने के लिए मैं तो बिल्कुल योग्य नहीं हूं, मैं तो इस संसार के जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र में पड़ा हूं, विषय भोग से इतनी मेरी आसक्ति है और ना जाने अब भगवान ने कैसे मुझे ये अवसर प्रदान कर दिया। ये एक सच्चे भक्त के लक्षण होते हैं। सच्चा भक्त नम्र होता है, सच्चा भक्त अपने आप को अयोग्य समझता है किसी भी सेवा के लिए। भक्तों को कभी ये नहीं सोचना चाहिए मैं तो अधिकारी व्यक्ति हूं इस सेवा के लिए, तो मुझे ये सेवा क्यों नहीं दी गई, मुझे वो पद क्यों नहीं दिया गया, कभी नहीं ऐसे सोचना चाहिए भक्त को। सुदामा जी का स्मरण करना चाहिए। सुदामा जी का नाम तो सबने सुना है, श्री कृष्ण के सहपाठी थे, गुरुकुल में। श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर वर्णन है उन दोनों की मित्रता का। बचपन में एक बार दोनों खो गए थे वन में, अंधेरी रात हो गई, बारिश होने लगी और गुरुकुल में सांदीपनि मुनि और उनके अन्य शिष्य बड़े चिंतित हो गए कि कृष्ण और सुदामा न जाने कहाँ खो गए जंगल में। सारे लड़के उनको ढूंढने गए लेकिन ढूंढ नहीं पाए, लेकिन जब बारिश होने लगी, अंधकार हुआ तो सांदीपनि मुनि ने उन सबको बुला लिया। रात भर श्री कृष्ण सुदामा के साथ में रहे और वहां पे सुबह जब वापस चले आए तो सांदीपनि मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए। अब इस घटना को अनेक वर्षों बाद श्री कृष्ण सुदामा को बता रहे थे, जबकि सुदामा जी अपने घर से, अपने गांव से द्वारका में गए थे द्वारकाधीश श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए। सुदामा जी के पत्नी ने तो उनको भेजा था कुछ मांगने के लिए, क्योंकि वो बहुत गरीब थे। परंतु सुदामा ने सोचा कि ये ठीक नहीं रहेगा, जब मैं श्री कृष्ण के पास जाऊंगा तो मैं कोई भौतिक चीज नहीं मांगूंगा। श्री कृष्ण वहां पर गए, क्षमा कीजिए, सुदामा जी वहां पर गए, श्री कृष्ण का दर्शन हुआ और कितने प्रेम से, आदर से श्री कृष्ण ने सुदामा का स्वागत किया। स्वागत करके उनको अपने आसन पर बिठाया, आसन पर बिठाकर उनकी आरती उतारी, उनके चरण धोए। अब थोड़े दिनों में द्वारका की यात्रा में सारे भक्त यहाँ जाने वाले हैं, तो सुदामा के निवास स्थान में भी सब भक्त जाएंगे, तो सुदामा जी की याद अब से शुरू करें भले। और इतने अच्छा व्यवहार श्री कृष्ण ने अपने भक्त सुदामा के साथ किया कि सुदामा का हृदय भर गया। और जब वहां से सुदामा निकल पड़े तो मन ही मन में सोच रहे थे, क्वाहम दरिद्र पापीयान क्व कृष्ण श्री निकेतनः, कि कहां मैं, अहम क्व अहम, दरिद्र, एक दरिद्र व्यक्ति, पापीयान, बहुत पापी व्यक्ति हूं, कहां मैं एक पापी व्यक्ति जो गरीब हूं, और क्व कृष्ण श्री निकेतनः, और कहां श्री कृष्ण जो कि लक्ष्मी देवी के निवास स्थान है, क्योंकि लक्ष्मी देवी वैसे श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर निवास करती हैं, इसलिए भगवान का नाम है श्री निकेतन या श्री निवास। तो सुदामा जी अपने मन ही मन सोच रहे हैं आश्चर्यचकित होकर कि कहां श्री कृष्ण और कहां मैं, कोई तुलना ही नहीं कर सकते। और मैं तो ब्रह्म बंधु हूं, ब्रह्म बंधु इति स्माहम इति स्म अहम, मैं निश्चित ही ब्राह्मण भी नहीं, ब्रह्म बंधु हूं। ब्रह्म बंधु किसे कहते हैं? जिसने केवल ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया है परंतु ब्राह्मणों के कोई गुण उसमें नहीं है, एक नाम के लिए ब्राह्मण है बस, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्म बंधु कहते हैं, ब्राह्मण नहीं। तो सुदामा जी तो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, परंतु नम्रता के वजह से अपने आप को ब्रह्म बंधु सोच रहे हैं। ब्रह्म बंधु इति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभितः, तो वो श्री कृष्ण ने जो कि श्री के निकेतन है, इस गरीब पापी सुदामा को क्या किया, आलिंगन किया अपने भुजाओं से। परिरंभितः बाहुभ्याम, बाहुभ्याम मतलब अपने भुजाओं से मुझे आलिंगन किया। सो इससे सुदामा को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा मेरा सौभाग्य, मैं बिल्कुल अयोग्य था उसके लिए, फिर भी श्री कृष्ण इतने कृपालु हैं कि इन्होंने ऐसे मुझसे किया। तो ऐसे सोचते सोचते अक्रूर जी जा रहे हैं कि मैं कितना अयोग्य हूं। सुदामा के पद चिन्हों में अक्रूर जी भी चल रहे थे। देखिए, भक्ति करनी है तो हमें ऐसे इन महाजनों से सीखना चाहिए। महाजनों येन गतः सपन्था, उनके चरण चिन्हों में हमें चलना चाहिए। तो ऐसे अक्रूर जी जा रहे हैं वृंदावन, तो हम भी जब वृंदावन जाते हैं या कृष्ण का दर्शन करने के लिए आते हैं तो अपने आप को भी अयोग्य समझना चाहिए। आगे पांचवें श्लोक में अक्रूर जी क्या कहते हैं, आइए सुनिए। ये श्लोक प्रसिद्ध श्लोक है। चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक को कहते हैं जबकि वो सनातन गोस्वामी को उपदेश दे रहे होते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में इसका उल्लेख है। तो आइए इस श्लोक का पाठ हम करते हैं। मैवं ममाधमस्यापि स्याद् एवाच्युत दर्शनम्। ह्रियमाणः कालनद्या क्वचित् तरति कश्चन। फिर अब सोचते हैं, मा एवं मतलब मा एवं, मा मतलब नहीं, एवं मतलब इस तरह। नहीं नहीं, इस तरह नहीं सोचना चाहिए मुझे। क्यों नहीं सोचना चाहिए? ऐसे अक्रूर जी नहीं सोच रहे हैं अभी कि मैंने जो सोचा कि मैं अयोग्य हूं वो गलत है। नहीं, ऐसे नहीं सोचना। लेकिन ये सोचना कि एक नीच व्यक्ति, एक पतित व्यक्ति को भगवान का दर्शन नहीं हो सकता, ऐसे मुझे नहीं सोचना चाहिए। ये भी संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि भगवान बड़े कृपालु हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा इतनी अपार है कि मुझ जैसे पापी विषयी व्यक्ति को भी वो दर्शन दे सकते हैं यदि वो चाहे तो। इसलिए ऐसे सोचने के बाद कि नहीं नहीं, मुझे दर्शन तो नहीं हो सकता भगवान का क्योंकि मैं इतना पापी व्यक्ति हूं, तो फिर अब अक्रूर सोचते हैं मा एवं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे चलो अभी रोको इन विचारों को। मुझे, मेरे ऊपर भी ये कृपा हो सकती है। मम अधमस्य अपि, मुझ जैसे अधम व्यक्ति के लिए भी स्याद एव अच्युत दर्शनम्। अच्युत या श्री कृष्ण का दर्शन करना भी संभव है। इसमें मेरी योग्यता नहीं है, ये योग्यता या गुण भगवान का है कि वो मुझे दर्शन दे सकते हैं हालांकि मैं अयोग्य व्यक्ति हूं। क्यों? ह्रियमाण काल नद्या क्वचित तरति कश्चन। जिस तरह से जब जीव काल रूपी नदी में बहके आता है तो कभी तट तक पहुंच भी सकता है, इसमें उस जीव का कोई, उस जीव की योग्यता कुछ नहीं है। बस काल की नदी में बहते आया हुआ जीव कभी भगवान के चरण कमलों को प्राप्त हो सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को यही बात समझाते हैं। संसार भ्रमिते कोनो भाग्य के हो तोरे, नदीर प्रवाह जैनो काष्ठ लागे तीरे। वो कहते हैं संसार भ्रमिते, एक कोई साधारण जीव हो जिसने कि अनेक योनियों में भ्रमण किया है, संसार में भ्रमण किया है, कभी स्वर्ग लोक में, कभी पृथ्वी लोक में, कभी नरक लोक में, तो ऐसे अनादि काल से भ्रमण कर करके कोनो भाग्य के हो तारे, कि ऐसे किसी विशेष भाग्य के कारण ऐसा भी जीव इस भवसागर को पार कर सकता है। ये संभव है। कैसे संभव है? नदीर प्रवाह जैनो काष्ठ लागे तीरे। जिस तरह से एक काष्ठ या लट्ठा होता है वो नदी के पानी में बहते हुए कभी तट में पहुंच सकता है, उस तरह से कभी कभी देखा जाता है कि जो व्यक्ति पेड़ काटता है और उस पेड़ को वो एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहता है, तो वो उस पेड़ को काट के उस लट्ठे को पानी में बहा देता है और वो लट्ठा पानी में बहते बहते नीचे चले जाता है, जहां कि उसमें उसका आदमी जो है वो कहीं दूर नीचे खड़ा हुआ होता है, अनेक मीलों दूर। फिर वो उस लट्ठा को पकड़ लेता है। तो ऐसे कई लोग ऐसा व्यवसाय भी करते हैं, क्योंकि कागज आदि बनाने के लिए कारखानों में ऐसे लट्ठों की आवश्यकता होती है। कभी कभी ऐसे भी देखा जाता है कि छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े हैं, घास है, इतने सारे चीजें बहते हुए चली जाती हैं और कभी तीर पे भी आके अटक जाती हैं। तो ठीक उसी तरह से ये जीव जो होते हैं काल की नदी के प्रवाह में बहते हुए बहुत लंबे समय तक बहते हुए एक आध बार कहीं कुछ भाग्य से तट में पहुंच सकते हैं। कोनो भाग्यकारो संसार क्षयोन्मुख होय, साधु संगे तार कृष्ण रति उपजोय। फिर महाप्रभु कहते हैं जब ऐसे बड़े भाग्य से जब उसका भाग्य खुल जाता है, भाग्योदय हो जाता है, तो उसे साधु संग मिल जाता है। साधु संगे तबे कृष्ण रति उपजाए। जब उसके संसार से मुक्त होने का समय आ जाता है तो हमें समझना चाहिए कि उसे भक्तों का संग मिल गया है। तो भक्तों के संग के सिवाय संसार को पार नहीं कर सकते। तो संसार इसको पार करना बहुत मुश्किल है, दुरत्यया प्राय असंभव है, परंतु साधु संग में आके भगवान श्री कृष्ण के प्रति रति या तीव्र आसक्ति उत्पन्न हो सकती है और यह सच्चा भाग्य है। इसलिए यहां पर भी अक्रूर जी यही कहते हैं, रियमाण काल नद्या क्वचित तरति कश्चन। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत के छठे स्कंध में एक कथा है महाराज चित्रकेतु की। वो विश्व सम्राट थे और लोकप्रिय थे, एक आदर्श राजा थे, धर्मपरायण थे, भगवान के भक्त थे, सद्गुणों से संपन्न थे, उनके जीवन में सब कुछ था, परंतु एक चीज की कमी थी उनके जीवन में कि उनका कोई संतान नहीं था जो कि उनके बाद राज्य चला सके, जो कि उनके बाद श्राद्ध आदि के द्वारा उनका उद्धार कर सके। तो बड़े दुखी रहा करते थे। और एक बार उनके राज्य में, उनके दरबार में अंगिरा मुनि आए, जो कि एक बहुत बड़े संत थे, ऋषि थे। ये देखकर कि राजा बड़े उदास लग रहे हैं, उन्होंने पूछा कि हे राजन, सब तो कुशल मंगल है ना आपके राज्य में? और अनेक ऐसे प्रश्न किए राजा के हित के बारे में, उनके प्रजा के बारे में, राज्य के बारे में इत्यादि। और फिर कहा कि मुझे ऐसे लगता है कि आप बहुत उदास लग रहे हैं, क्या समस्या है आपके जीवन में? तो राजा चित्रकेतु ने कहा कि आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आप तो भली भांति जानते हैं कि मेरे जीवन में क्या कष्ट है और मैं क्यों उदास हूं, फिर भी आप जब पूछ रहे हैं तो मैं उत्तर दूंगा। मेरे इतने सारे रानियां हैं, मैं इतना लोकप्रिय हूं, दुनिया की हर चीज मेरे पास है, परंतु संतान न होने के कारण अब मेरा भविष्य जो है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, केवल आगे अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ रहा है। तो अंगिरा मुनि ने कहा कि ठीक है, मैं एक यज्ञ संपन्न करने जा रहा हूं और उसका जो अवशिष्ट होगा, जो प्रसाद होगा, वो आपके किसी एक रानी को आप खिला दीजिए और आपका संतान हो जाएगा। तो फिर आगे चल के जब ऐसे हुआ तो चित्रकेतु महाराज ने उस प्रसाद को अपनी वरिष्ठ रानी कृतद्युति को सौंप दिया। कृतद्युति ने उस प्रसाद को, खीर को खा ली और थोड़े समय बाद, थोड़े महीनों के बाद गर्भवती हो गई। राजा बड़े प्रसन्न हुए और थोड़े महीनों के बाद फिर जन्म हुआ बच्चे का। जब खबर सुनी राजा ने तो उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही, बहुत प्रसन्न हुए, अपने राज के कार्यों के प्रति भी लापरवाही दिखलाने लगे और दिन ब दिन उनकी आसक्ति इस छोटे बच्चे के प्रति बढ़ती गई। जिस प्रकार से जब एक व्यक्ति बहुत गरीब होता है और बहुत लंबे समय से गरीब होता है और अचानक उसको धन मिल जाता है तो उस धन के प्रति उसका प्रेम दिन ब दिन बढ़ते जाता है, तो ठीक उसी तरह से राजा चित्रकेतु के मन में भी इस छोटे अपने पुत्र के प्रति स्नेह बढ़ता गया दिन ब दिन। और क्योंकि पुत्र श्रेष्ठ रानी का था तो उस रानी के प्रति भी प्रेम उनका दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। और जब इस एक रानी के प्रति प्रेम बढ़ता गया तो दूसरों के प्रति वो उपेक्षा करने लगे, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो अन्य जितने भी रानियां थीं उनके मन में जलन हो गई, बहुत बहुत ईर्ष्या और द्वेष उत्पन्न हुआ कि हमारा अब इस महल में कोई स्थान ही नहीं है, राजा तो हमारे प्रति बिल्कुल लापरवाही दिखला रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, सारा ध्यान सारा प्रेम जो है बस महारानी कृतद्युति को दे रहे हैं और इसका कारण है ये बच्चा। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचाया कि चलो हमारे रास हमारा जीवन दुखी बनाने के कारण केवल यही एक बच्चा है, तो इस बच्चे को ही समाप्त करते हैं। तो उन्होंने बच्चे को विष खिला दिया, बच्चे की मृत्यु हो गई। जब रानी को पता चला, राजा को भी पता चला, तो जितने पहले वो खुश थे अब उतने ही दुखी हो गए, उनकी दुख की कोई सीमा नहीं रही। राजा चित्रकेतु को जब पता चला तो दौड़ते हुए अपने पुत्र के पास आए, लेकिन ठीक से चल भी नहीं सके, कभी फिसलते कभी गिरते कभी रोते, और अपने पुत्र के पास आकर बेहोश होकर गिर पड़े। हा पुत्र, दोनों राजा रानी जोर जोर से फूट फूट कर रो रहे थे। उनके दुख को देखकर महल के अन्य निवासी जो हैं वो भी उसी तरह से रोने लगे। सारे राज्य में ये खबर फैल गई, उदासीपन छा गया सारे राज्य में, और जो अन्य रानियां थीं जिन्होंने विष पिलाया था उस पुत्र को, वो भी रोने लगी झूठा झूठा दुख अपना व्यक्त करने के लिए, ताकि कोई उनको दोषी न समझे। और ऐसे इतने दुखी थे राजा, वहां बस गिर पड़े थे जमीन के ऊपर, बाल बिखरे हुए थे, कपड़े इधर उधर बिखरे हुए थे, कभी रोते कभी बेहोश होके फिर से गिर पड़ते। उधर अंगिरा मुनि को पता चला कि राजा की दशा क्या है और हुआ क्या है महल में, तो इस समय अंगिरा मुनि अकेले नहीं आए, अपने प्रिय मित्र नारद मुनि को लेकर आए। तो दोनों वेश बदल के आए। जब राजा के सामने आए तो राजा को उपदेश देने लगे कि राजन देखिए, अब आपको ऐसे रोने से क्या लाभ, वैसे आप गौर से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस बच्चे का संबंध आपके साथ क्या था और आपका इस बच्चे के साथ संबंध क्या है। गहराई में सोचिए, ऐसे तत्व ज्ञान आत्म ज्ञान अंगिरा मुनि ने दिया। तब राजा की आंखें थोड़ी बहुत खुलने लगीं और कहने लगे कि आप तो कोई आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति लगते हैं, जैसे और अनेक ऋषि मुनि हैं, जैसे असित हैं, देवल है, नारद जी हैं, अंगिरा मुनि हैं। फिर अंगिरा मुनि ने कहा, हाँ मैं स्वयं अंगिरा मुनि हूं और ये मेरे मित्र नारद मुनि हैं। जब मैं पहले आया था तुम्हारे पास हे राजन, तुम्हारे मन में पुत्र प्राप्ति की कामना इतनी तीव्र थी कि मैंने सोचा कि तुम्हारी इच्छा पूर्ण किए बिना तुम कभी ठीक स्थान पर पहुंच नहीं पाओगे, तत्व ज्ञान तो समझ ही नहीं पाओगे। ये सही बात है। कई लोग होते हैं जिनको आप भगवद गीता का उपदेश समझाने जाएंगे, वो समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतने वो डूबे हुए हैं संसार के सुख में या दुख में, दोनों में हो भले, कि वो समझ ही नहीं पाएंगे। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पहरत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो जो व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य में डूबा हुआ रहता है, उसको आध्यात्मिक विषयों के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति निष्ठा भावना उत्पन्न हो ही नहीं सकती। स्थिरता जो चाहिए मन की, चित्त की, वो उत्पन्न नहीं हो सकती। तो अंगिरा मुनि कहने लगे कि हे राजन, इसलिए मैंने आपकी इच्छा तो पूरी कर दी थी, और आपको याद होगा मैंने कहा था कि आपका बच्चा आपके लिए हर्ष और शोक दोनों का कारण बन जाएगा, और उस समय आपने सोचा होगा कि ठीक है, दुनिया में सारे बच्चे जो हैं ये हर्ष और शोक दोनों अपने माता पिता को देते हैं। बच्चे का जन्म होता है तो माता पिता को बड़ा हर्ष होता है, आनंद होता है, लेकिन दुख भी तो होता है। आप में से जो माता पिता हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं बच्चों को बड़ा करना कितना कठिन काम है। तो बच्चों को बड़ा करते करते बहुत परेशानी लेनी पड़ती है माता पिता को। कई बार बच्चे बात सुनते नहीं हैं, कभी शरारत करते हैं, कभी ठीक से पढ़ाई नहीं करते, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं, और कभी कुछ बच्चा कुछ गलत काम कर देता है तो और भी दुख हो जाता है। उस समय राजा ने सोचा था कि ठीक है कोई बात नहीं, यदि कोई मामा न होने के बजाय अंधा मामा भी हो चलेगा, लेकिन मामा तो है, ऐसे कहावत है ना। तो इसी तरह से पुत्र न होने से भला कि कोई पुत्र हो, भला अब तो थोड़ा सुख मिलेगा, आगे चल के बड़ा हो जाएगा न जाने क्या करेगा, तब दुख हो जाए मुझे, कोई बात नहीं, ये तो दुनिया का नियम है। तो खैर, फिर अंगिरा मुनि कहने लगे कि हे राजन, अब बच्चों के माता पिता के दुख क्या होते हैं वो आप समझ रहे हो, तो खैर कोई बात नहीं, अभी आप जान लो कि ये संसार क्या चीज है। आत्मतत्व ज्ञान थोड़ा और दिया अंगिरा मुनि ने, और फिर नारद जी बात करने लगे और कहने लगे कि हे राजन देखिए, कभी कभी देखा जाता है कि नदी में बालू के कण बहते रहते हैं नदी के प्रवाह में लहरों की वजह से, और कभी कभी ये बालू के कण तट तक पहुंच जाते हैं। ठीक उसी तरह से जीव, अनेक अनंत जीव है यहां पर जो भटक रहे हैं भौतिक सृष्टि में, कभी इस योनि में, कभी उस योनि में, कभी इस लोक में तो कभी उस लोक में। तो ऐसे भटकते भटकते कहां पहुंचेंगे ये पता नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं कि इनका भविष्य क्या होगा। और अब मैं आपको ये एक मंत्र दूंगा जिसका उच्चारण करने से भगवान के प्रति आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा, भक्ति बढ़ जाएगी। शिव जी ने भी इस मंत्र का उच्चारण किया था अपने आदरणीय भगवान संकर्षण भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करने के लिए। और अब मैं मेरी योग सिद्धि के द्वारा आपके इस पुत्र के आत्मा को मैं पुनः बुला ले आता हूं, तो नारद जी ने अपने योग शक्ति का प्रयोग किया और उस बच्चे के शरीर में से जो आत्मा निकल के गई थी वो आत्मा फिर से आ गई उस शरीर में, और वो बच्चे ने आंखें खोल दी और बच्चा बात करने लगा कि आपने मुझे यहां क्यों बुलाया है, और अपने पिता की ओर देखने लगे। पिता बहुत खुश हो गए, राजा चित्रकेतु, अरे बेटे तुम आ गए वापस, देखो अब हमारे बीच में रहो। तो बच्चे ने कहा कि कौन मेरा पिता है, कौन मेरी माता है, पिछले जन्म में मेरे माता पिता थे, उसके पिछले जन्म में भी थे, अब आप कहते हो आप मेरे माता पिता हैं, अब और कहीं हम जाएंगे हमारे माता पिता रहेंगे, तो कौन है हमारे माता पिता। तो वो भी नदी के प्रवाह का उदाहरण देने लगा वो बच्चा, और फिर कहने लगा कि आसक्ति हमें संसार में हो जाती है, लेकिन आसक्ति किस काम की। जब कोई व्यक्ति सोना किसी से खरीद लेता है और आगे चल के उस सोने को बेच डालता है तो सोने के प्रति आसक्ति तब तक रहती है जब तक वो उसके पास होती है। जब सोना उसने बेच डाला तो सोना गया उसके हाथ से। ठीक उसी प्रकार से जानवर हमारे पास होता है, कोई गाय बैल हम बेच डालते हैं किसी दूसरे किसान को, जब तक हमारे पास होती है होते हैं वो जानवर, हम प्रेम करते हैं फिर चले जाते हैं, उनको भूल जाते हैं। उसी तरह से जीव जो होते हैं वो आते हैं कभी इस परिस्थिति में काल की नदी कर्म के प्रवाह से, और उनके कोई मित्र होते हैं, कोई रिश्तेदार होते हैं, परिवार होते हैं, शत्रु भी हो जाते हैं, फिर जब अगले जीवन में वो चले जाते हैं तो भूल जाते हैं सब कुछ। किसे पता है कि हम पूर्व जन्म में हमारा परिवार कौन था, कौन सा था, उसके पहले जन्म में हम कहां थे, कौन थे। लेकिन जैसे जैसे एक के बाद एक हमें शरीर मिलते हैं और हम उनको त्याग करते हैं तो हमें याद नहीं रहता। इसलिए इन परिस्थितियों से जो कि क्षणभंगुर हैं इनसे आसक्त नहीं होना चाहिए हमें। हमें जान लेना चाहिए कि हमारा एक शाश्वत संबंध मात्र श्री कृष्ण के साथ में है। उस शाश्वत संबंध को पुनः स्थापित या जागृत करने का प्रयास हमें करना चाहिए इस दुर्लभ और मूल्यवान मनुष्य जन्म में। तो ऐसा संदेश जब सबने सुना तो उनके हृदय में जो भी शोक था, दुख था, वो सब मिट गया। और फिर वो बच्चा या बच्चे के शरीर से वो आत्मा है पुनः बाहर चली गई। तो कब ये सौभाग्य होगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जैसे कि चैतन्य महाप्रभु समझा रहे हैं, सौभाग्य तब होगा जब हमें भक्तों का संग मिलेगा। तो भक्तों का संग मिलना ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। प्रभुपाद जी बताते हैं बार बार कि अब हम भक्ति तब कर सकते हैं जबकि पूर्व जन्म में भी हमने थोड़ी भक्ति की होगी। हम फिलहाल इंग्लैंड होकर आए थे लंदन में, तो वहां एक महिला है और बचपन से ही उनको सपने आने लगे या दृश्य आने लगे उनके पूर्व जन्म के बारे में। अब अपने माता पिता से कहती रही, माता पिता सोचते थे ये क्या विचित्र बात है, और वो किसी लड़के की बात करते थे कि मैं ये लड़का था या थी, क्या कहना चाहिए, था पहले, अब लड़की है लेकिन पहले लड़का। और फिर उनको पता चला कि मैं एक ब्रह्मचारी थी, हरे कृष्ण मंदिर में मैं प्रभुपाद जी की शिष्य थी। तो कौन विश्वास करता, पहले इधर बताया उधर बताया कि भक्तों के पास खबर आई, भक्तों ने सोचा रहे कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन कौन जाने। फिर उन्होंने वर्णन किया उस व्यक्ति का कि व्यक्ति दिखने में कैसे था, वो क्या था। फिर सब बातचीत करने के बाद भक्तों को पता चला कि हाँ जैसे वर्णन है वैसे ही एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे जो ब्रह्मचारी थे, तरुण अवस्था में ही कोई वाहन में अपघात होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, और उनके थोड़े समय बाद, उनके मृत्यु के थोड़े समय बाद ही इस महिला का जन्म हुआ था। और जितने भी लक्षण गुण आदियों आदि इनका वर्णन किया उस महिला में, इस महिला ने उस ब्रह्मचारी के मित्रों को याद था भी कि हाँ ये मित्र ऐसे ही थे। तो खैर, कहने का मतलब है कि वो ब्रह्मचारी, उनका तो देहांत हो गया तरुण अवस्था में, और तुरंत भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए अब हरे कृष्ण संस्था में ही उनको पुनः एक अवसर मिल गया। अब वो महिला है कोई बात नहीं, पहले ब्रह्मचारी थे अब महिला है, लेकिन भक्त है, भक्ति में क्या फर्क पड़ता है, हम पुरुष हों स्त्री हों सभी लोग भक्ति कर सकते हैं और अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर रथ यात्रा के समय एक बार हमने उनको देखा, सब वहां कीर्तन में थी, मृदंग वगैरह बजा रहे थे, भक्तों के संग में। तो याद है कि मैं पूर्व जन्म में कौन थी। वैसे अनेक उदाहरण हैं। तो पिछले जन्म में भक्ति करते हैं तो इस जन्म में भी भक्ति करने का अवसर मिलता है। तो उसके पिछले जन्म में क्या कर रहे थे, हाँ और थोड़ी भक्ति कर रहे होंगे, और उसके पहले जन्म में और थोड़ी भक्ति, उसके पहले और थोड़ी भक्ति, कम 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 करते करते। इसकी शुरुआत हुई कहां से पता नहीं, अनादि काल से थोड़ा 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 ये बढ़ते जाता है। जब इसकी पूंजी, भक्ति की पूंजी, सुकृति की पूंजी जब बढ़ती जाती है और जब पूंजी पर्याप्त हो जाती है, तब भक्तों का संग करने का अवसर मिल जाता है, तब भक्तों का संग प्राप्त होता है। तो ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। लाखों लाखों करोड़ों जन्मों में जबकि हम इस संसार में रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण मोड़ इन करोड़ों जन्मों का वो है जब वो सुकृति की पूंजी पर्याप्त होने के कारण हमें भक्तों के संग में प्रवेश मिलता है। और भक्तों के संग में आकर हम भक्ति करना शुरू करते हैं। हो सकता है पूर्व जन्मों में जो सुकृति की अनजाने में कर ली होगी, या इतनी निष्ठा से नहीं की होगी, परंतु जब भक्तों के संग में आकर स्वेच्छा से भक्ति करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हाँ, पूर्व जन्म अनेक जन्मों से ये चलती हुई बात है, कोई एक जन्म की बात नहीं है। तब अहो सौभाग्य है, भाग्य खुल गया है हमारा कि हमें भक्तों का संग मिल गया है। लेकिन नहीं पता होने के कारण इस भक्तों के संग को सहज या सस्ता लेने की संभावना भी रहती है। इससे हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि भक्तों के संग के द्वारा ही हम कृष्ण भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। साधु संग तबे कृष्ण रति उपजय, इसलिए एक सुभाषित है संस्कृत में या कहावत मुहावरा, अति परिचयात अवज्ञा। अंग्रेजी में भी ऐसे कहावत है, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। तो संस्कृत में है अति परिचयात अवज्ञा, कि अति परिचय किसी व्यक्ति से हो जाता है तो उसका अनादर हम करने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है, चाणक्य पंडित कहते हैं, देखो अग्नि के पास और गुरु के पास बहुत ज्यादा पास में नहीं जाना, क्योंकि हो सकता है ज्यादा परिचय होने के कारण हमारी दृष्टि बदल जाए, साधारण व्यक्ति समझना शुरू करे, ये भी खाते हैं, ये भी पीते हैं, ये भी सोते हैं। तो जो हमारे संसार की दृष्टि है उनके प्रति भी वैसे होने लगती है। तो खैर, अति परिचयाद अवज्ञा। परंतु ये मुहावरा आगे भी है, सतत गमनाद अनादरो भवती। इसके लिए उदाहरण दिया जाता है। सतत गमनाद मतलब बार बार किसी के घर में जाने से अनादरो भवती, अनादर होगा हमारा। किसी व्यक्ति के घर इतने बार नहीं जाना चाहिए कि वो व्यक्ति हमारा अनादर करने पे बाध्य हो जाए, क्योंकि ज्यादा परिचय हो जाता है, बहुत ज्यादा परिचय होने के कारण अनादर होने की संभावना रहती है। लेकिन हाँ, मंदिर के प्रति ऐसे नहीं सोचना चाहिए। मंदिर दूसरों का घर नहीं, अपना ही घर है ना, इसलिए अपने घर में तो हम रह सकते हैं, जितने बार आए, सुबह शाम दोपहर आए, यहां कोई अनादर नहीं होगा, बल्कि कृष्ण के प्रति आदर की भावना बढ़ेगी। फिर आगे मलये भिल्ल पुरिंद्री चंदन काष्ठ इंधनम कुरुते। जो मलय नाम का एक प्रांत है जिसमें जो प्रसिद्ध है चंदन के लिए, चंदन तो बहुत सुगंधित होता है और बहुत ही विशेष और अद्भुत सुगंध है चंदन के, तो चंदन के वृक्ष के गुण जो हैं वो बहुत विशेष होते हैं, इसलिए बहुत मूल्यवान माना जाता है, खास कोई काम के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। परंतु मलये भिल्ल पुरंधरी, जो आदिवासी महिलाएं हैं कभी कभी जो मलय प्रांत में निवास करती हैं, चंदन तरु काष्ठ इंधनम कुरुते, इस चंदन के पेड़ को काटते हैं और उसको पकाने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब है, साधारण समझते हैं कितने सारे पेड़ हैं, ये चंदन का पेड़ भी और एक पेड़, चलो इतने सारे चंदन के पेड़ हैं तो एक पेड़ काट लिया पकाने के लिए, तो जलाने के लिए क्या उसमें खराबी है। लेकिन जो दूर रहते हैं मलय प्रांत से, उनको चंदन का मूल्य पता है, वो तो हाय हाय करते रहेगा, अरे देखो ये तो जलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं चंदन, हम तो लाखों रुपए देते हैं चंदन इतना लाने के लिए और ये तो ऐसे जला रहे हैं। अति परिचयात अवज्ञा। ऐसे भी कहा जाता है कि कभी जो प्रयाग में व्यक्ति रहता है वो अपने घर में रहकर स्नान करता है नल खोल के, जबकि त्रिवेणी संगम पास में है, त्रिवेणी संगम में गंगा यमुना और सरस्वती इन नदियों का मिलन होता है। वैसे इन तीनों ही नदियों में अलग अलग स्नान करने से भी कितना लाभ मिलता है और इसके संगम में स्नान करने का फायदा तो कितना अधिक है। तो प्रयाग में रहते हुए, नदी के तट में रहते हुए, वहां संगम में स्नान करने के बजाय वो अपने घर में कोई स्नान करेगा, कहीं वो जो नगर पालिका है उसके द्वारा पानी मिला हुआ है कहीं से, उससे स्नान करेगा, तो कितनी दुर्भाग्य की बात है ये। तो ठीक उसी तरह से, क्योंकि भक्तों के संग प्राप्त करने से इतना बड़ा मोड़ हमारे करोड़ों जन्मों के अवधि में यहां प्राप्त होता है, क्योंकि इतना अहो सौभाग्य होता है हमारा, इसलिए भक्तों के संग में हमें ये अति परिचयाद अवज्ञा इस सिद्धांत से बच के रहे, इसको ध्यान में रखना चाहिए। भक्तों के बीच में रहते हुए सबका आदर करना चाहिए, किसी को साधारण नहीं समझना चाहिए, भले कोई नया भक्त हो, कोई पुराना भक्त हो, किसी भी तरह का भक्त क्यों ना हो, सबका आदर करते हुए हमें चलना चाहिए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिससे अक्रूर जी यहां कह रहे हैं कि देखो, हालांकि मैं इतना अयोग्य हूं, फिर भी अब मुझे भगवान का दर्शन करने का अवसर मिल सकता है, क्योंकि भगवान इतने कृपालु हैं। फिर आगे छठे श्लोक में क्या कहते हैं, छठा श्लोक है वहां, ठीक है, तो आइए इसका भी पाठ हम करते हैं। ममाद्या मंगलम नष्टम, फलवंश्चैव मे भवः। यन्नमस्ये भगवतो योगे ध्येयां घ्रिपंकजम्। तो अक्रूर जी सोच रहे हैं, मम अद्य, आज, अद्य मतलब आज, मम मतलब मेरा, आज मेरा क्या हुआ है, अमंगलम नष्टम, मेरे सारे पाप, जितने भी अभद्र चीज, अमंगल चीज मेरे जीवन में है, वो आज नष्ट हो चुके। क्यों हो चुके ऐसे नष्ट? क्योंकि फलवम शैव मे भवः, और मेरा आज जन्म जो है वो सफल हो गया। क्यों ऐसे? यन्नमस्ये भगवतो, कि आज मैं भगवान, भगवतः, भगवान श्री कृष्ण को नमन करने जा रहा हूं, मैं दंडवत प्रणाम करने जा रहा हूं भगवान को। कौन से भगवान है ये? योगी ध्येय अंघ्री पंकजम, जिनके अंघ्री पदम या जिनके पंकज अंघ्री, जिनके चरण कमलों के ऊपर ध्यान करते हैं बड़े बड़े योगी, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करने वाला हूं। और ऐसे नमस्कार करने से आज मेरा सारे जितने भी पाप हैं, अमंगल जितना भी कुछ मेरे जीवन में है, वो नष्ट हो जाएगा। कैसे? एक नमस्कार से, एक दंडवत प्रणाम से। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के सामने एक बार दंडवत प्रणाम करने से इतना लाभ होता है कि कोटि कोटि पुण्य कार्यों को संपन्न करने से भी नहीं होता। ढेर सारे पुण्य कार्य हमने कर भी लिए होंगे, लेकिन उनकी तुलना हम हरगिज भगवान के सामने एक दंडवत प्रणाम से नहीं कर सकते। कभी तुलना हो ही नहीं सकती इन दोनों की, क्योंकि अंतर इतना ज्यादा है। एक दंडवत प्रणाम करने से भगवान के धाम जाने के लिए जो द्वार हैं वो खुल जाते हैं। इसलिए कभी प्रणाम करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, प्रणाम अच्छी तरह से कर लेना चाहिए। कई ऐसे भी लोग होते हैं जो प्रणाम नहीं करते हैं। कोई एक भक्त हमसे कह रहे थे कि वो किसी एक ऐसे व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत के बारे में प्रचार कर रहे हैं, बता रहे हैं, जो कि किसी दूसरे धर्म को मानते हैं, जिस धर्म में मना है उनको किसी को भी प्रणाम करने के लिए। इसलिए वो कहते हैं कि हमें आपके कृष्ण भावनामृत जो है, ये पथ है, ये बहुत अच्छा लगता है। वो मंदिर में आते हैं, कीर्तन उनको बहुत अच्छा लगता है और दर्शन आदि भी अच्छा लगता है। मतलब फिलॉसफी, दर्शन, मत देखने वाला दर्शन और सुनने वाला दर्शन, दोनों उनको अच्छे लगते हैं, प्रसाद अच्छा लगता है। लेकिन एक चीज वो जो नहीं कर पा रहे हैं, कई महीनों के बाद, अभी एक दो साल भी हो चुके होंगे, लेकिन ये चीज मुझसे नहीं हो पा रहा है। क्या है वो? दंडवत प्रणाम, भगवान के सामने दंडवत में नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि वो संस्कार हैं, उनके पूर्व संस्कार, जो कि उनके भक्ति के पथ में बाधक बने हुए हैं, दंडवत प्रणाम नहीं कर सकते हैं। परंतु भगवान ने तो स्पष्ट कहा है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करो मामे वैश्यसि युक्त्वैवम आत्मानं मत्परायणः। नौवे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में भगवान कहते हैं, मन मना मेरा स्मरण सदैव किया करो, भव मद भक्तः मेरा भक्त बनो, मद याजी मेरी उपासना करो, माम नमस्कुरु मुझे प्रणाम करो, मुझे दंडवत करो। रूप गोस्वामी कहते हैं दंडवन्नति ही, हमें दंडवत अवश्य करना चाहिए भगवान के सामने आके। तो ये एक साधन भक्ति का अंग है। जब धाम में जाते हैं, जैसे धाम महात्म्य के बारे में बताया गया है कि जो व्यक्ति धाम में जाके सो भी जाता है तो उसको दंडवत का लाभ मिलता है, जैसे पुरी है, मायापुर है। तो देखिए, धाम में जाने से इतना लाभ होता है, भले आदमी जाकर वहां कीर्तन भजन ना करे, सोएगा तो सही ना। जब सोएगा तो दंडवत करने का लाभ भी मिल जाएगा। तो जब दंडवत करते हैं तो सही तरह से करना चाहिए, दोनों हाथ सामने पूर्व आगे रख के करने चाहिए। दंडवत करते समय हाथों को अंदर खींच के वक्षस्थल के पास रख के नहीं करना चाहिए, पूरा दंडवत होना चाहिए। पुरुषों के लिए, हाँ महिलाएं तो अधिकतर पंचांग प्रणाम करती हैं, और पुरुष होते हैं वो साष्टांग प्रणाम, पूर्ण दंडवत प्रणाम करते हैं। तो ऐसे प्रणाम करते समय हाथ दोनों आगे पूरी तरह से होनी चाहिए, अंदर नहीं ऐसे रखना चाहिए। तो भगवान की कृपा भी ऐसे ही मिलेगी, फिर भगवान खींच के ही रख लेंगे। ये शरणागति पूरी तरह से नहीं ले रहा है, ऐसे मानो कि हिचकिचा रहा है शरणागति लेने में। तो हाथ फैला लेंगे तो बस कि पूरी तरह से शरण में आ गए, हाथ को ऐसे खींच के रख लिया तो भगवान भी कृपा खींच के रख लेंगे, थोड़ा ही देंगे। साथ साथ में एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए, एक हाथ में कुछ पकड़ा हुआ एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से करना चाहिए। और जब दंडवत प्रणाम करते हैं तो भगवान की स्तुति भी करनी चाहिए, गुरु का प्रणाम को प्रणाम करना चाहिए और भगवान की स्तुति भी करनी चाहिए। कम से कम एक हरे कृष्ण महामंत्र तो बोल ही देना चाहिए। तो इस तरह से दंडवत करने के बारे में सोच रहे हैं अक्रूर जी। तो अगली बात जो है, जो पांचवी बात है, चौथी बात क्या थी इसके पहले, कि जैसे हम पहले चर्चा कर रहे थे कि आते समय जब हम अपने अयोग्यता का स्मरण कर रहे हैं तो ये भी सोच लेना चाहिए कि भगवान और उनके भक्त कितने कृपालु हैं कि अब हम यहां आ पा रहे हैं। साथ साथ ये भी सोचना चाहिए कि मैं जब वहां पहुंचूंगा मंदिर में या वृंदावन में तो क्या करूंगा, मैं दंडवत प्रणाम करूंगा भगवान के सामने। तो ऐसे दंडवत का स्मरण करते हुए भी हमें चलना चाहिए। फिर आगे सातवें श्लोक में, ये भी बहुत सुंदर श्लोक है, अक्रूर जी कहते हैं, कंसो बदात्या कृतमेत्यनुग्रहम्, द्रक्ष्येङ्घ्रिपद्मं प्रहितो मुना हरेः, कृतावतारस्य दुरत्ययं तमः, पूर्वे तरण्यन्नखमण्डलत्विषा। कंसः बत अद्य अकृत मे अति अनुग्रहम्। अक्रूर जी कह रहे हैं, कंस को आशीर्वाद दे रहे हैं, कंस को धन्यवाद दे रहे हैं। क्यों कंस को धन्यवाद दे रहे हैं? कंस बत, बत मतलब वाकई, वास्तव में इस कंस ने अद्य आज कृत बहुत अच्छा काम मेरे लिए किया है। क्या किया है? अति अनुग्रहम, अति कृपा मेरे ऊपर आज कंस ने की है। आप समझ गए ना क्यों कंस किस तरह की कृपा की बात कर रहे हैं? क्योंकि आज कंस की वजह से, कंस के आदेश के कारण मैं आज द्रक्षे अंघ्रि पद्मम प्रहितो मुना हरे है, आज श्री हरि श्री कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन करूंगा, द्रक्ष्य मतलब देखूंगा, अंघ्रि पद्मम भगवान के चरण कमलों का दर्शन आज मैं करने वाला हूं। और ऐसे क्यों हो, ऐसे संभव है, क्योंकि कंस ने मुझे भेजा। इसलिए कंस ने ऐसे आदेश देकर मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। तो देखिए, भगवान के पास जाने के लिए कभी कोई असुर भी निमित्त बन सकता है। भगवान किसी के भी माध्यम से हमें कृपा प्रदान कर सकते हैं, कोई भी क्यों ना हो। कई बार ऐसे हो भी जाता है, कभी कोई असुर जो होता है वो कुछ डांट के बोल देता है, या भर्त्सना करता है, या कभी निंदा करता है, तो उसको सुन के एक व्यक्ति सोचे जाके देखते तो हैं। और ऐसे हुआ भी, एक बार एक व्यक्ति था, कोई और व्यक्ति हरे कृष्ण वालों की बहुत भला बुराई कर, भला बुरा कुछ कह रहा था, तो इस व्यक्ति ने सोचा जाके देखते तो हैं ये लोग कैसे हैं। तो उस व्यक्ति की वजह से वो आए भक्तों के संग में और भक्त बने। उसने कुछ अच्छा नहीं सुना था हरे कृष्ण वालों के बारे में, क्योंकि ये व्यक्ति कुछ भला बुरा बोल रहा था, ये भक्त ऐसे होते हैं, ये धर्म ऐसे होता है, और भगवान की भक्ति क्या, भगवान है ही नहीं, तो क्यों अपना समय बर्बाद करते हैं ये लोग हरे कृष्ण हरे राम बोल के, बहुत कुछ बोल रहे थे। तो इस व्यक्ति ने सोचा जाते हैं चलो। तो वो व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति तो असुरी प्रवृत्ति का था, उसने तो काफी बुराई कर दी भगवान की, भक्तों की। तो ऐसे व्यक्ति ने प्रोत्साहन दिया इस व्यक्ति को, जाओ। तो इसके लिए वो आए, भक्त बने। देखिए, भगवान ने उस व्यक्ति को, उस नास्तिक व्यक्ति को एक निमित्त बना दिया इस व्यक्ति को मंदिर आने के लिए, और वो आगे भक्त बन गया। तो भगवान की कृपा कैसे आती है कहना बहुत मुश्किल है, अद्भुत होती है भगवान की कृपा। एक दो वर्ष पूर्व रूस देश में किसी एक शहर में वहां के जो कोई अधिकारी व्यक्ति थे, उन्होंने सोचा कि ये हरे कृष्ण आंदोलन जो है रूस देश में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इनको रोकना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि अभी भगवत गीता पढ़ के ये लोग ऐसे बने हैं, हमारे रूस लोग जो हैं, रूसी लोग जो हैं, ये सब ऐसे बन रहे हैं, भक्त कृष्ण भक्त बन रहे हैं, तो अब भगवत गीता जो है इसको हमें बंद करना चाहिए। तो अदालत में उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि इस भगवत गीता को बंद किया जाए, कि यहां इसका वितरण न हो, इसका मुद्रण न हो, वितरण भी न हो। और काफी तर्क वगैरह हुए वहां, और जब भक्तों को पता चला कि ऐसे न्यायालय ने, पहले निम्न श्रेणी के न्यायालय ने आदेश दिया है कि भगवत गीता को आगे चल के बंद करना चाहिए, यहां मुद्रणालय में इस किताब को छापना नहीं चाहिए, वितरण भी नहीं होना चाहिए, तो भक्तों को बड़ी चिंता हुई कि ये कैसे निर्णय है। फिर वहां तो भक्तों ने, भक्तों तो चुप नहीं बैठे, जगह जगह जाकर भक्तों ने प्रचार और 10 गुना बढ़ा दिया। यहां भारत के संसद में भी तो काफी कुछ हुआ, आपने सुना होगा उसके बारे में। और इसकी वजह से लाखों लोग जो है देखने लगे, क्या है भगवद गीता, हम भी जरा देख लेते हैं, ये लोग इतना विरोध कर रहे हैं तो चलो जाके देख लेते हैं। तो भगवद गीता का वितरण 10 गुना ज्यादा बढ़ गया रूस देश में, सारे जगत में, क्योंकि ये खबर तो सब जगह फैल गई, सारे विश्व में फैल गई कि ये लोग भगवद गीता को बैन करना चाहते हैं। तो इसलिए देखिए, कभी भगवान किनको निमित्त बनाते हैं। वो बेचारे न्यायालय में बैठे व्यक्ति, वो अधिकारी, उन्होंने थोड़ी सोचा होगा कि हम भगवान कृष्ण के निमित्त हैं, यंत्र हैं, लेकिन भगवान ने उनको चुन लिया। और इस तरह से भगवद गीता आदि का प्रचार और भी बढ़ गया, भगवान ने और लोगों को उनके चरण कमलों में ला लिया। तो इसी तरह से हमें भी उन व्यक्तियों के प्रति बहुत आभार होना चाहिए जिनके द्वारा हमें यहाँ भगवान के भक्ति में आने का अवसर मिला है। सदैव यदि ऐसे हम नहीं रहेंगे तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। और जब हम भक्ति मार्ग में रहते हैं तो हमें जानना चाहिए कि हम हरेक भक्त के ऊपर निर्भर रहते हैं, किसी भी भक्त को साधारण नहीं समझना चाहिए। देखिए विडंबना कैसी है कि भक्त कभी एक असुर को हमें भक्ति में लाने के लिए मदद कर इस्तेमाल कर सकते हैं, और कभी कभी ऐसे ही होता है कि हम भक्त होने के बाद कभी ऐसा कुछ व्यवहार करें जिससे कि कोई व्यक्ति भक्ति छोड़ के चले जाए, ऐसे भी हो सकता है ना। इसलिए भक्त को सोचना चाहिए कि हमारा व्यवहार इतना अच्छा होना चाहिए, इतना आदर्श होना चाहिए, अन्यों के साथ भी हमारा बर्ताव ऐसे होना चाहिए कि उसकी श्रद्धा भक्ति में बढ़े, उसका प्रेम भगवान के प्रति बढ़े, भक्तों के साथ संबंध उसका और भी अच्छा हो जाए, घनिष्ठ हो जाए। न कि हम ऐसे बर्ताव करें उसके साथ कि बेचारे की श्रद्धा भगवान में और भक्तों में कम हो जाए। तो कभी हमारे सामने भी यदि कोई ऐसे अवसर आ जाता है तो हमें देखना चाहिए कि अन्यों के प्रति श्रद्धा कम न हो, भगवान के प्रति श्रद्धा कम न हो, क्योंकि आजकल कलयुग में श्रद्धा बहुत जल्दी टूट जाता है भगवान में लोगों का। श्रद्धा बहुत कोमल होती है लोगों की, थोड़ा कुछ इधर उधर होने से व्यक्ति चले जाते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जन्माष्टमी या रथ यात्रा जैसे महोत्सव में बहुत सारे लोग आते हैं, अतिथि के रूप में आते हैं, भले वो प्रतिदिन समय समय पर आने वाले लोग नहीं होते हैं, केवल ऐसे बड़े अनुष्ठानों में आ जाते हैं। और बाद में फिर कभी कभी ऐसे पता चलता है वो किसी भक्त को कह देते हैं कि देखो हम आपके रथ यात्रा महोत्सव में आए थे, लेकिन हम जब यहां ऐसे गए तो उस व्यक्ति ने हमें ऐसे कह दिया, इसलिए हम नाराज होके चले गए, अभी हम नहीं आए आपके मंदिर में। अभी एक साल बाद, दो साल बाद किसी को पता चला तो भक्त ने नहीं 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 क्षमा कर दीजिए, ऐसे उन्होंने ऐसे जानबूझ के नहीं कहा होगा, नहीं किया होगा। तो ऐसे अनजाने में भी भला ऐसे कुछ हुआ होगा। लेकिन देखिए भक्तों के लिए कितना महत्वपूर्ण है कि अन्यों के साथ, चाहे वो एक साधारण अतिथि हो या साधारण भक्त हो, कोई भी हो, कोई भी साधारण नहीं है वास्तव में। जो भी भगवान के कार्यक्रम के लिए आता है, भगवान के अनुष्ठान में आता है, मंदिर में आता है, वो असाधारण है। अनेक जन्मों के बाद ऐसी सुकृति प्राप्त करने के बाद वो व्यक्ति यहाँ पर आया है, कम से कम हमारे मंदिर में आया, रथ यात्रा में आया, जन्माष्टमी में आया, इसी समय वो जाके सिनेमा देख के बैठ सकता था, वो और कोई कार्य कर सकता था, लेकिन उन कार्यों को छोड़कर अब वो यहाँ भक्तों के संग को पाने के लिए आया है। तो बड़े आदर से, बड़े प्रेम से, सत्कार से उनके साथ बर्ताव करना चाहिए। तो फिर अक्रूर जी कहते हैं, कृतावतावरस्य दुरत्ययः तमः पूर्वे तरण्यन् नखमण्डल विषा। वो कहते हैं कि वो भगवान जो कि समय समय पर अवतीर्ण होते हैं इस भौतिक जगत में, जिस संसार को पार करना दुरत्यय बहुत ही मुश्किल है, और जिनके चरण कमलों के ऊपर ध्यान करके, जिनके चरण कमलों के नखमंडल के तेज मात्र से ऐसे बड़े बड़े योगियों का, ज्ञानियों का उद्धार हो जाता है, वो संसार को पार कर सकते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन मैं आज करने जा रहा हूं। और ये किनकी वजह से? कंस की वजह से। कंस का जय जयकार हो। कंस की वजह से अब मुझे कृष्ण का दर्शन मिला। देखिए भाग्य कितना अद्भुत होता है। इसलिए दुनिया में भगवान ने किसके लिए क्या व्यवस्था कर रखी है कहना बहुत मुश्किल है। कई बार ऐसे होता है कि जीवन में बहुत विकट परिस्थिति आ जाती है। एक बार ऐसे हुआ कि एक व्यक्ति को अपने व्यवसाय में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और ऐसी परिस्थिति आ गई कि वो बेचारा रोता रह गया। ऐसा दुख का अनुभव उसने जीवन में नहीं किया था। ऐसे सोचते सोचते ऐसे दुखद अवस्था में वो हरे कृष्ण मंदिर में आया और आके वो आगे चल के भक्त भी बन गया। सच्ची कहानी है ये। हाँ, सभी लोग ऐसे नहीं आते, एक आध बार को भी आ जाते हैं, लेकिन आए भी तो भगवान कहते हैं ये लोग भी बहुत श्रेष्ठ हैं, उदार हैं, क्योंकि कम से कम अपने दुख में मेरे पास तो आए। नहीं तो कई लोग अपने दुख के समय क्या करते हैं, कोई शराब पीता है, कोई कविता लिखने बैठ जाता है अपने दुख में। ये तो कम से कम मेरे पास आया। तो कष्ट को कैसे एक अच्छा अवसर में परिवर्तित हम कर सकते हैं, दुख की परिस्थिति को एक ऐसे अवसर में परिवर्तित करके हमारे भाग्य का उदय कैसे जीवन में ला सकते हैं, ये सोचने की बात है। जैसे इस व्यक्ति को इतना कष्ट हुआ, जब थोड़ा बहुत रोया फिर उसको समझ में आया कि मुझे भगवान का आश्रय लेना चाहिए, और भगवान के पास आया। भगवान ने स्वीकार किया, भक्तों ने स्वीकार किया, उसका जीवन धन्य हो गया। कई करोड़ रुपए खो चुके थे वो और उनके पास अब कुछ नहीं रहा था, लेकिन इन कड़े करोड़ों रुपए का मूल्य क्या है? आज नहीं तो कल ये करोड़ों रुपए हमसे छीन लिए जाएंगे। लेकिन करोड़ों रुपए छीन लिए जाने के बाद उनको मिला क्या? सबसे मूल्यवान भेंट उनको मिली, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, जिसका कोई मूल्य नहीं है। भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो अमोल अनमोल है ये। जितने भी करोड़ों अरबों रुपए की कीमत आप लगाने जाएं भगवान की भक्ति के प्रति, तो वो कम होगा। तो करोड़ों रुपए निकल गए उनके, खत्म हो गए, बहुत कम कीमत है वास्तव में, क्योंकि भगवान की भक्ति का मूल्य अपार है। तो ये व्यक्ति बहुत भाग्यशाली था, क्योंकि उसने अपने ऐसे कष्ट के परिस्थिति को एक सौभाग्य के परिस्थिति में बदल दिया। कैसे? श्री कृष्ण की भक्ति के पथ में आके। तो हमें अपने भाग्य को कोसना नहीं चाहिए। जब कोई व्यक्ति दुर्भाग्य की परिस्थिति में पहुंच जाता है, कोई कठिनाई होती है, तो अपने भाग्य को कोसने बैठ जाता है या भगवान को कोसने बैठ जाता है। ऐसा एक नकारात्मक दृष्टि रखने के बजाय व्यक्ति को सोचना चाहिए कि भगवान ने मेरे ऊपर बहुत कृपा की, भगवान ने मुझे ऐसा प्रोत्साहित किया है कि मैं अब उनके शरण में ही जाऊं। भक्ति मार्ग में आगे चलते चलते भी भक्तों के जीवन में ऐसे कष्ट भी आ सकते हैं, तो हमें भी सोचना चाहिए कि भगवान ने हमारे ऊपर ऐसी कृपा की है हमारे शरणागति को और तीव्र बनाने के लिए। हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए इतने सालों से हम भक्ति कर रहे हैं और इसका फल क्या हुआ, देखो भगवान ने हमारे जीवन में इतने कष्ट भेज दिए। नहीं, सच्चा भक्त कभी ऐसे नहीं सोचेगा। केवल जो कच्चे भक्त होते हैं वो ऐसे सोचते हैं। जो सच्चे भक्त होते हैं वो सोचते हैं ये भी भगवान की कृपा है, भगवान ने मुझे एक अवसर दिया है हरि नाम का पूरी तरह से आश्रय लेने के लिए। नामश्रया कोरी थाको आपन काजे, नामश्रय कोरी यतने तुमी थाको आपन काजे। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि देखो मेरे भाई, जब तुम अपने भौतिक कार्यों से थक जाओगे, माया की लाठी खा खा के उब जाओगे, तब तो कम से कम हरि नाम का आश्रय पूरी तरह से लेना। इसलिए हमें भी हर अवसर को, चाहे वो सुख का हो दुख का हो, उसको भगवान के भक्ति में आगे बढ़ने के लिए एक अवसर समझ के स्वीकार करना चाहिए। तो ऐसे अक्रूर जी के विचार हैं। कंस को भी जब वो धन्यवाद दे सकते हैं तो हमारे जीवन में आने वाले कठिन परिस्थितियों को क्यों हम नहीं धन्यवाद दे सकते? यदि उनसे हमें भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिले तो आगे अक्रूर जी क्या सोचते हैं इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो कृपया कल भी शाम को यहाँ आइएगा। अब हम भजन गाएंगे, भगवान श्री कृष्ण का गुणगान संगीत के माध्यम से, और उसके बाद दर्शन होंगे भगवान के, और उसके बाद प्रसाद सबके लिए। हरे कृष्णा।